ओ नमः भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमं ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक नंबर 29। जेना उपशांति भूतानां खिलोकानां अपि इहतां अंतरहितः अंतहृदये कस्मात् न वेद न आशिष। जेन उपशान्तिभूताना खिलोकानां पिहता अंतरहितो अंतरहृदये कस्मानो न वेद नाशिष। जेन उपशांति भूताना खिलोकानां पिहता अंतरहितो अंतरहृदये कस्मानो वेदनाशिष। जेन उपशांति भूताना खिलोकानां पिहता अंतरहितो अंतरहृदये कस्मानो वेदनाशिष। शब्दानुवाद। जेना जिस विधि से उपशांति समस्त इच्छाओं की संतुष्टि भूतानाम जीवों की खिलोकानाम अत्यंत पतितों की अपि यद्यपि इहताम अनेक वस्तुओं की कामना करते हुए अंतर्हितः छिपे हुए अंतहृदये हृदय के भीतर कस्मात् क्यों ना हमारे वेदा जानता है ना नहीं आशीषा इच्छाएं। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवदीक्षिता भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसके समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव है, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे। तात्पर्य, सीधा भक्त अपने आप को सीधा नहीं मानता, वह सदा अत्यंत विनीत होता है। भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभाव तथा इच्छाओं को समझ सकते हैं। वे अभक्तों को भी अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है, मतः स्मृति ज्ञानम अपहनम च। तुच्छ से तुच्छ जीव भी जो कुछ चाहता है भगवान उसको अंकित करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। यदि अभक्तों की इच्छा पूर्ण हो सकती है तो फिर भक्तों की क्यों नहीं होगी। शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है और यदि वह अपने अंतस्थल से जहाँ भगवान का वास है चाहता है, और यदि वो किसी अन्य भाव से रहित है तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे। यदि निष्ठावान भक्त भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा करता है तो उसके सारा कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि हृदय में स्थित भगवान उनकी निष्ठा को समझ लेते हैं। इसी प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति संबंधी सारे कार्य कर जाता है तो अंत में उसे सफलता प्राप्त होगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरुसुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजत्तं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदन सहगणा ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन सत्संग में आप सबको कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी शीर्षक चल रहा है प्रचिताओं के कार्यकलाप। प्रचिताओं के कार्यकलाप से हमको समझना चाहिए, बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इतना श्लोक तक पाठ हो चुका है, लगभग 29-30 श्लोक तक पाठ हो चुका है। तब कहने का अर्थ है, कोई भी स्कंद की कोई भी चैप्टर चालू होता है तब भक्त लोग संपूर्ण चैप्टर को बनाना कर देते हैं। तब और हम लोग एक एक श्लोक का ऊपर चर्चा करते हैं तो उसको बोलने के लिए और कुछ आगे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसको हमको रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए कुछ नया नया चीज़ लाना पड़ता है, अलग अलग शास्त्र अलग अलग पुराण अलग अलग किताब से उधार करके यहाँ बताना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी श्लोक का ऊपर कहा जाता है, कभी कभी श्रील प्रभुपाद का अनुवाद को देखते हुए उसका ऊपर चर्चा किया जाता है, कभी कभी भावार्थ श्रील प्रभुपाद का जो भावार्थ लिखे उसका ऊपर देख के चर्चा करना होता है। तब आप आज जो श्लोक है, आज का श्लोक से यही वर्णन आता है, भगवान सभी का हृदय में विराजमान है और सभी का इच्छा पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, मंदिर पे हर व्यक्ति आता है, चोर भी आता है, साधु भी आता है, तब दोनों का कामना को पूरा करते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में विराजमान जब हृदय में है वो क्या मांग रहा है, क्या याचना कर रहा है। भगवान चोर का भी इच्छा को पूर्ति करते हैं, साधु का इच्छा को पूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना पड़ेगा, चोर किस भाव से क्या चीज मांग रहा है और साधु की भक्त की महंत संत किस भावना में आते हैं मंदिर और मंदिर में क्या प्रार्थना करते हैं। दोनों में आप बहुत अंतर है। फिर दूसरा अर्थ में कहते हैं प्रार्थना और स्तुति में क्या अंतर है। प्रार्थना होता है कभी हमें भगवान का पास आते हैं कि भगवान का सामने जाते हैं कि मंदिर जाते हैं कि कोई बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, तब हमें उनको दोनों प्रार्थना और स्तव मतलब स्तुति में कोई अंतर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। प्रार्थना में होता है हमें भगवान से कुछ मांगते हैं, स्तुति में कहा जाता है हमें उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ये दोनों में इतना ही थोड़ी सा अंतर है प्रार्थना और स्तुति में। और यहाँ पे प्रचेता लोग का ये स्तुति है, प्रचेत लोग भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तब किस प्रकार भक्त और अभक्त में अंतर है, इसमें थोड़ी सी आपको बताता हूँ महाभारत से। भगवान द्वारिकाधीशी द्वारिका में सोए है, जब शयन किए थे दोनों का इच्छा को पूर्ति किए, अर्जुन का इच्छा को पूर्ति किए, फिर दुर्योधन का इच्छा को पूर्ति किए, किए कि नहीं किए, दोनों गए थे। पहला भगवान जब शयन में थे, भगवान कैसा सोए थे, पेट ऊपर, आप लोग क्या बोलते हैं, चित होके सोए थे, मतलब पेट ऊपर रहे और आँख ऊपर। तो भगवान ऐसे है सोए, कोई कर्मठ में लगा कर नहीं सोए थे। तब दुर्योधन जब गया, तब दुर्योधन पहला गया था क्योंकि गुरु और पांडव का अंदर युद्ध जब निर्धारित किया गया, तब उन्होंने भगवान से कुछ सहायता मांगने के लिए गए थे। तब दुर्योधन पहला जब जाके कहाँ पे बैठा, भगवान शेर का पास, भगवान सोए है और भगवान का शेर का पास बैठा। तब भगवान का शेर का पास बैठे, तब बाद में अर्जुन गए, अर्जुन जाके भगवान का चरणों पे बैठे नहीं खड़े रहे, बैठे नहीं खड़े रहे। भगवान अंतर्जामी के रूप में समझ चुके थे, जान चुके थे, लेकिन जब आँख खोले तब आँख खोलने मात्र से किसका ऊपर नजर पड़ी, अर्जुन का ऊपर नजर पड़ी। तब अर्जुन का ऊपर नजर पड़ने का बाद फिर भगवान दुर्योधन को देखे, तब देखने का बाद तब दोनों से पूछे भगवान किसके लिए आप आए हो। तब दोनों बोलते हैं हमारा युद्ध निर्धारित हुआ है, हम आपसे कुछ सहायता मांगने के लिए आए हैं। तब जब पूछा गया तब भगवान एक संकल्प लिए, कहते हैं मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा लेकिन कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब अरे दोनों को दोनों तो परेशानी हो गए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध होगा कैसा। तब फिर और यहाँ पे कहते हैं दुर्योधन का बेटी भगवान कृष्ण का बेटा का साथ शादी हुआ था, भगवान कृष्ण का बेटा का नाम सांब था, सांब का साथ किसका शादी, दुर्योधन का बेटी। आप सोचो कृष्ण और दुर्योधन ऐसा हिसाब देखा जाए तो क्या होंगे, लौकी का हिसाब में क्या होंगे, रिलेशन में समुंदी हुए। ये भगवान यहाँ पे अलौकिक लीला करते हैं, और फिर अर्जुन का साथ कृष्ण का क्या संबंध है? कृष्ण का बहन सुभद्रा का साथ अर्जुन का शादी हुई, तब कृष्ण और अर्जुन का साथ संबंध क्या हुआ? साला हुई, तो ये संबंध है। अब सोचो लौकिक के हिसाब से लोग देखेंगे तो भगवान तो दोनों का साथ रिलेशन है, यहाँ पे समुंदी है और इसका साथ साला है, तो कैसा है? लेकिन लौकिक दृष्टि से नहीं देखना है, कभी भी लौकिक दृष्टि से नहीं देखा जाता है भगवान का जो लीला है। संसार में लोग वही सोचते हैं, चाहते हैं, अरे भगवान राम सीता के लिए रोए थे, लोग ये लौकिक लीला का ऊपर चला जाते हैं, अलौकिक लीला करते हैं भगवान, लोग को दृष्टि में वो समझ नहीं पाते हैं। तब कहने का अर्थ है, तब वहाँ पे जब अर्जुन का आप पर दृष्टि पड़ी तब भगवान कहे तब क्या मांगो? तो भगवान कहे देखो एक ही साइड में मैं रहूँगा एक ही जगह पे, और एक ही साइड में मैं कुछ सैन्य दूंगा। जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें 18 अक्षौणी योद्धा थे, गुरु का साइड में 11 और पांडव के साइड में 7 अक्षौणी सेना, लेकिन दुर्योधन का साइड में 10 अक्षौणी थे, लेकिन कृष्ण दिए 1 अक्षौणी सेना। तब जब पूछे, पहला अर्जुन को पूछे आप क्या चाहिए, आप मेरा को चाहते हो कि सैन्यगण को चाहते हो? तब अर्जुन को क्यों पहले पूछे? क्योंकि दुर्योधन से छोटा भाई है, दुर्योधन से छोटा उम्र में छोटा है कौन? अर्जुन। इसीलिए कहते हैं बड़ा व्यक्ति हमेशा छोटा व्यक्ति को पहले सम्मान देना चाहिए, स्नेह करना चाहिए और पहले इसको हिस्सा को निकाल देना चाहिए। कभी भी भाई भाई के अंदर झगड़ा होता है पहले छोटे भाई को संतुष्ट कर दो। तो कृष्ण यहाँ पे पहले छोटे का ऊपर क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्णा का जो दृष्टि पहले अर्जुन के ऊपर पड़ा था, पहला दृष्टि जिसको पड़ा था, इसलिए पहला मांगने का अधिकार होता है अर्जुन का। तब अर्जुन को जब भगवान पूछे क्या चाहिए आपको, तब भगवान कहे, तब अर्जुन मांगा आपको ही मैं चाहता हूँ, मेरा को योद्धा नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। भगवान वहाँ पे समझाते हैं, बोले युद्ध क्षेत्र में मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा तो आपका युद्ध होगा कैसा? आप क्यों मेरा को चुने हैं? भक्त हमेशा के लिए किसको चुनेगा? भगवान को। कुछ भी हो जाए भक्त के लिए, कितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन चुनेगा भगवान को। इसलिए कहते हैं भगवान से हरि विमुख से जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। संसार के लोग बहुत सारा मंदिर पे जाते हैं, बहुत सारा धर्म तीर्थ में जाते हैं, लेकिन मांगते हैं भौतिक वस्तु। वो चाहते हैं भौतिक वस्तु मिल जाएगा तो हमें सुखी हो जाएंगे। भगवान भी इच्छा पूरी कर देते हैं लेकिन सुखी नहीं हो सकते हैं। संसार के सुख से जो सुख मिलता है वो सुख सुख नहीं है, लेकिन हरि का विमुख से। इसलिए कहते हैं तब कर्मठ पीठ जाम ही बरु बारा, बंध्या सुतो बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविध फूला, जीव न लह सुखी हर प्रित कूला। कहते हैं कछुआ का पीठ पर बाल उग जाए, बाई चांस कभी कछुआ का पीठ के ऊपर बाल होगा? कभी सुना कि कभी देखा नहीं? फिर बाई चांस भी उठ जाए, और कोई एक बांज की पुत्र सबको मार डाले, अरे बांज है पुत्र कहाँ से आओगा? फिर भी बाई चांस बांज है कि बच्चे को पैदा दी और सभी को मार दिया, लेकिन हरि विमुख से। और दूसरा कहते हैं आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल उगे, परंतु हरि श्री हरि का विमुख से जीव सुखी नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब अर्जुन ने भगवान को चुना और दुर्योधन क्या चुना? सन्यगण। दुर्योधन खुशी हो गया, बोला देखो ये इतने बड़े मूर्ख है जो कि भगवान को चुना है, भगवान हाथ में तो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, कैसा युद्ध करेगा, मेरा पास तो इतनी युद्ध योद्धा है। क्योंकि आसुरी की प्रवृत्ति लोग इसी प्रकार की भावना रखते हैं, सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, धन संपत्ति है, घर बाड़ी है, और ये बाबा बन गया तो ये इसका पास क्या है, ये सोचते हैं। और भक्त के पास भगवान विराजमान है, भक्त का हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति का हृदय में है, लेकिन भगवान का भक्त के पास ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, नजीक है। इसलिए कहते हैं भक्त पुकारने में देर हो सकता है, भक्त भगवान को पुकारने में देर हो सकता है, भगवान पधारने के लिए देर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कोई संसार में संसारगत के लिए भगवान के पास आकर इच्छा करें, कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा करें, भगवान उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर, ये पहले ध्यान देना चाहिए, अलग अलग स्तर पर। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद पिछला श्लोक में एक भावार्थ में एक कोट करते हैं, भगवान भक्ति से वशीभूत होते हैं। भगवान भक्ति से कैसा वशीभूत होते हैं? एक ब्राह्मण था, शास्त्र में सुना था भगवान का सेवा मन से की जा सकती है, और वो ब्राह्मण ने मन से ही एक दिन सेवा किया, भगवान उसका सामने नहीं थे, लेकिन भगवान थे कहाँ पे, वैकुंठ लोक में। तब वो ब्राह्मण ने जब शास्त्र सुन के सेवा करने के लिए गए, एक दिन गोदावरी का नदी का तट पर नहाया, गोदावरी नदी पे जाके नहाया, नहा के जो सुना था शास्त्र से, तब वो मन से ही मन सेवा करने लगे। क्या सेवा किया उन्होंने? भगवान के लिए खीर बनाने के लिए मन से विचार किया, तब मन से ही सब कुछ लाया, सब कुछ मन से, मन से जो दूध लाए, मन से पात्र लाया, मन से लकड़ी लाया, मन से आग लगाई, मन से चीनी लाया, मन से दूध डाले, सब कुछ मन से ही बना रहा है, और मन से बनाते बनाते खीर बन गया, खीर बन गया। खीर बनने का बाद तब वो मन से सोच रहा है भगवान को एक एक कटोरी में खीर लगाना है, और खीर का पात्र लेके भगवान का सामने रखता है, मन से रख के, और मन में सोचता है इतना गर्म खीर है, मन में सोच रहा है, सोच के जब अंगूठी खीर में लगाया तब तत्काल अंगूठी क्या हुआ, जल गई। तब जल गया तो उसका जो मन की भावना था इमीडिएटली वो चंग गए, और उसी टाइम पे वैकुंठ लोक में भगवान शयन में रहते हुए लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे। तब उसी टाइम पे भगवान थोड़े से मुस्कराए, यहाँ पे भक्त मन से सेवा कर रहा है, खीर भोग लगाए, तब भगवान वहाँ पे भक्त का भाव को आस्वादन करते हुए थोड़ी सी मुस्कराए। तब लक्ष्मी जी देखते हुए पूछने लगे, प्रभु क्या हुआ, क्या मैं आपका पैर में कोई सुई लगा दी और कुछ कर ली तो आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, और कोई आपका पाटराणी आ गई, आप उनको देख कर हंस रहे हैं, किसके लिए आप हंस रहे हैं? भगवान तब तक नहीं बताए। तब उसी टाइम पे ये लीला को देखते हुए नाराज जी पधारे। तब नाराज जी पधारने के बाद भगवान ने नारद जी को भेजे, बोले जाओ मर्त्य लोक में एक ब्राह्मण ने मेरा के लिए खीर प्रस्तुत करके भोग लगाए, तब वो व्यक्ति को पुष्प का विमान दे के भगवान ने भेजा, उनको लेकर आओ। तब पुष्प के विमान जब आया तो व्यक्ति के पास पहुंचा, तो व्यक्ति पुष्प विमान में बैठ के वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में जाने का बाद तो भगवान का सामने जब खड़े हुए तो भगवान ये रहस्य को लक्ष्मी जी को बताने लगे। बोले जानते हो, ये व्यक्ति ने मेरा को मौन से ही खीर प्रस्तुत करके लगा रहे थे, और खीर गर्म था कि ठंडी, तब जब उन्होंने जब मौन से ही प्रस्तुत करके हाथ लगाई खीर में, तब हाथ जल गया, तब मेरा मुख से हंस निकल गए, इसलिए मैं हंसे। तब कहने का अर्थ है, भगवान को मानसिक स्तर पर सेवा किया जा सकता है, लेकिन मौन उसी प्रकार शुद्ध हो तो। अभी का समय पे ऐसा स्थिति नहीं, ऐसा समय नहीं, ऐसा काल नहीं, ऐसा परिस्थिति नहीं है जो कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, कि ऐसा स्थिति भी नहीं है। इसलिए कहते हैं भागवत में एक श्लोक आता है, निष्ठा भाव से भक्ति करने से भगवान उनके अंतस्थल को साफ कर देते हैं, लेकिन प्रभु को जानने के लिए शुद्ध भक्ति ही चाहिए। कहते हैं भागवत की एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को कहते हैं, न साधयति माम जोगो न संख्यम धर्म उद्धव न सुधाय तपस्त्यागो यथा भक्ति मम स्मितो हो। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाले मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके बस में करने वाले हैं, अतएव जोग संख्य दर्शन शुद्ध कार्य वैदिक अध्ययन तप तथा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा कभी वशीभूत नहीं होता हूँ। सिर्फ शुद्ध भक्ति से भगवान वशीभूत होते हैं। दूसरा अर्थ में भगवान भगवद गीता में कहते हैं 18:55 श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति जवान जस्मा जश्चास्मि ततो ततो माम ततो ज्ञान्त्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में रहता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। वैकुंठ लोक को प्रवेश करने के लिए सिंपल है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति ऐसा नहीं कोई हमें क्रीम लगा के शरीर को शुद्ध कर ले, कि शुद्ध भक्ति कोई लिपस्टिक की कोई ऑयल ऑइंटमेंट लगा के शुद्ध भक्ति कर ले, कोई ड्रेस पहन के शुद्ध भक्ति कर दें, ऐसा नहीं। इधर एक मन में आता है, एक भी चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे लिखा है, मोर नृत्य देखते उहार कौन शक्ति पय पान करी ले कि मोर है भक्ति। कोई दूध पान करने से भक्ति हो जाता है ना, राबड़ी खाने से भक्ति हो जाता है, पय पान करने से कोई मेरा प्राप्त नहीं हो पाता है, केवल भक्ति द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। इसलिए कहते हैं भक्ति जो जोगे भीष्मा तुमा जिनिले समरे, भक्ति जोगे जसोदाय बांधिले तुम्हारे, भक्ति जोगे तुम्हारे बेचिल सत्य भामा, भक्ति बसे तुम्हें कांधे कैल गोपारामा, अनंत ब्रह्मांड कुटी बहे जरा मने से तुम्हें सिदामा गोप बहिला अपने। भक्ति के माध्यम से भीष्मा पितामह युद्ध क्षेत्र में प्रभु को जान लिए, और भक्ति योग में जसोदा भगवान कृष्ण को बांध लिए। अनंत ब्रह्मांड कोटि कहे जा रहा मना सेतुमि श्रीदाम गोप बहिला अपना। अब भगवान श्रीदाम ने क्या किया भक्ति में, तब कांध में वहन किए। इसलिए दूसरा अर्थ में है कि कभी कभी सुबह का क्लास में, सुबह का जो माला जपने का क्लास होता है उसमें बोलना पड़ता है कि संसार में व्यक्ति शरीर का प्रति इतना आसक्त है, शरीर मिला है प्रभु का भक्ति के लिए, लेकिन शरीर संपूर्ण भक्ति नहीं करके शरीर के लिए करता रहता है, तब उनको कहा जाता है प्रत्येक जीव का चार ही पत्नियाँ होते हैं, प्रत्येक जीव का चार पत्नियां होते हैं, पहला नंबर पत्नी को सुबह से शाम तक देखभाल करता है, दूसरा नंबर पत्नी को साथ में देखाता रहता है, तीसरा नंबर पत्नी से सलाह लेता है, चौथा नंबर पत्नी को कभी मोड़ कर देखा नहीं। तब बताइए पहला नंबर पत्नी कौन है जो कि सुबह से शाम तक हमें देखभाल कर रहा है? क्या है? शरीर। सुबह से शाम तक हमें देखभाल लगे है। दूसरा नंबर पत्नी है जो कि साथ में लेकर दिखाते रहते हैं, कौन है? धन संपत्त जेब में लेते हैं ना, पैसा लेकर दिखाते रहते हैं, बैंक बैलेंस दिखाते रहते हैं, ये दूसरा नंबर पत्नी। तीसरा नंबर पत्नी से सलाह लेते हैं, तीसरा नंबर पत्नी है रिश्तेदार, जितने सब रिश्तेदार है उनसे सलाह लेते हैं। चौथा नंबर पत्नी को कभी मोड़ कर देखा नहीं आत्मा को। चौथा नंबर पत्नी कौन है? जब जिस दिन मृत्यु होता है, शरीर छूटता है, तब एक एक कर पत्नी को पूछता है, पहला नंबर पत्नी को पूछता है, आप मेरा साथ जाओगे? हाथ जोड़ कर पूछता है, आप मेरा साथ जाओगे? जो शरीर के लिए सुबह से शाम तक लगे पड़े थे वो मना कर देता है। दूसरा नंबर पत्नी से पूछता है, आप मेरा साथ जाओगे? धन संपत्ति जाता है, वो भी मना कर देता है। तीसरा नंबर पत्नी से पूछता है, सारा रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार साथ में जाते हैं? नहीं जाते हैं। चौथा नंबर पत्नी को, जिसको मोड़ कर कभी नहीं देखा, इसको जो पूछता है तो वो क्या बोलता है? मैं ही जाऊंगा। तब हमें किसके लिए करना है? शरीर के लिए करना है कि आत्मा के लिए करना है? शरीर मिला है, शरीर मिला है कृष्ण का भक्ति करने के लिए। मनुष्य शरीर मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए। जो महामूर्ख है भगवान से आकर क्या मांगेगा? विषय भोग मांगेगा। मतलब भगवान कहते हैं जौहर मांग रहा है, मेरा से जौहर मांग रहा है। ये तो एक प्रकार की जौहर है, मेरा से जौहर मांग रहा है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? सो चरणामृत दिया विषय भुलाया। भगवान इसका विषय को भुला के अपना चरणामृत देते हैं, देके उसका मोह को खंडन कर देते हैं जो कि वो चीज़ नहीं मांगे। तब फिर इसको भक्ति में जुड़ाते हैं, तब फिर वो भक्ति करने लगता है। तब यहाँ पे कि आता है विचार, कहते हैं राधे राधे जो भाव से कहते कृष्ण दूर नहीं उनसे रहते हैं। जो राधा रानी का भाव से पुकारता है तो कृष्ण उनसे दूर नहीं जाते हैं। मन में अगर पाप है तो कभी होगा नहीं जाप है। मन में अगर जाप है तो कभी नहीं होगा नहीं पाप है। तो इसलिए कहते हैं व्यक्ति जप करेगा नहीं तो पाप करेगा। जप करने वाले पाप नहीं करेंगे, पाप करने वाले जप नहीं करेंगे। मन में अगर चल रहा है मंत्र तो कभी होगा नहीं षडयंत्र। मन में अगर षडयंत्र है तो कभी मन में नहीं चलेगा मंत्र है। तो मन में भाई चंद मंत्र है, षडयंत्र नहीं चलेगा, लेकिन मन में षडयंत्र है। षडयंत्र मतलब हमें दूसरा का दोष को देख रहा है, दूसरा का ईर्षा, दूसरा का प्रति ईर्षा कर रहा है, मंत्र कहां से होगा? मन में अगर सुविचार है तो समझो बेड़ा पार है। मन में अगर संस्कार है तो शुद्ध हमारा व्यवहार है। मन में अगर शांति है तो कभी होगी नहीं क्रांति है। मन में अगर क्रांति है तो कभी नहीं होगा शांति है। मन में अगर राम है तो कभी होगा नहीं बुरा काम है। मन में अगर बुरे काम है तो मन में कभी होगे नहीं राम है। मन में अगर कृष्ण है तो होगी नहीं कोई तृष्णा है। मन में अगर तृष्णा है तो नहीं होगे कृष्णा है। मन में अगर शाम है तो हमारे मन को आराम है। भगवान श्याम आपका मन में है तो आपका मन हमेशा आराममय है। मन में अगर कन्हैया है तो हमारी पार जीवन नया है। मन में अगर भगवान है तो कभी होगा नहीं अभिमान है। भगवान आपका मन में है तो अभिमान नहीं आएगा, और जिसी का मन में अभिमान है वह होंगे नहीं भगवान है। मन में अगर प्रेम ही है, प्रेम ही प्रेम है, तो वहाँ नित नेम ही नेम है। मन में अगर समर्पण है तो हमारा जीवन भगवान को अर्पण है। मन में अगर भक्ति है तो हमारे अंदर प्रभु की शक्ति है। मन पे अगर निस्वार्थ है तभी होगा परमार्थ है। मन में अगर स्वार्थ है तो कभी होगा नहीं परमार्थ है। मन में अगर आशा है तो कभी होगी नहीं निराशा है। मन में आशा है प्रभु मिलेंगे तभी निराशा नहीं, और जिसका मन में निराशा है वहां से आशा रहित। मन में अगर आनंद है तो अंदर साक्षात परमात्मा परमानंद रूप में विराजमान है। इसीलिए मन को शांत बना के प्रभु का चरण पे लगाओ, प्रभु का भक्ति में लगाओ, प्रभु का समर्पण हो जाओ, तब हमारा जो इच्छा वैकुंठ को जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए जो इच्छा है, वो इच्छा को भगवान स्वयं पूर्ति कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, मतः स्मृति ज्ञानम अपहनम च। भगवान अंतर्जाम के रूप में स्मृति और विस्मृति भगवान से ही आता है, भगवान से ही दुख और सुख आता है, भगवान से ही दिन और रात होता है, भगवान से ही सब कुछ होता है, लेकिन आपका इच्छा क्या हो रहा है। इसलिए कहते हैं एक व्यक्ति को बता गया, बोले आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि माया को प्रसन्न करना चाहते हैं। तब उनको जब बता गया, उन्होंने सिंपल अर्थ बोल दिया, मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं। तब वो व्यक्ति को एक ही घर का अंदर भेजा गया। उसी घर का अंदर तीन चीज रखा गया, तीन चीज, एक ही में भगवान, एक साइड में, एक साइड में सारा जगत का धन संपत्त, और एक ही साइड में सुंदरी 16 साल की लड़की। तब उसका घर का अंदर जब प्रवेश किया गया तब उसका मन कहाँ गया, कहाँ पे गया बताइए। उन्होंने बोला था मेरा मन भगवान की तरफ जाएगा, लेकिन आते हुए इमीडिएटली 16 साल की माता का पास, 16 साल के लड़की का पास, और उसका मन उसका पास है धीरे धीरे फिर धन का पास आया, और धन से मोहित हो गया, और ज़्यादा मोहित धन से हो गया, भगवान कृष्ण से विमुख हो गया। हमें बोलते हैं हमारा मन भगवान में लग जाए, लेकिन ये सब सांसारिक वस्तु जब आ जाता है ना, हमारा मन संपूर्ण दूर हो जाता है भगवान से, हरि विमुख हो जाता है, तो कैसा हमको शांति मिलेगा। और भगवान जहाँ पे है, इसलिए कहते हैं जहाँ पे राम वहाँ नहीं काम, और जहाँ पे काम वहाँ नहीं राम। तवा जो संसार में प्रत्येक व्यक्ति का इच्छा को भगवान पूरा करते हैं, तो भगवान भक्त का इच्छा को क्यों नहीं पूरा करेंगे। निष्ठावान भक्त जो होगा उसका इच्छा जो होगा क्यों नहीं पूरा करेंगे। इसलिए प्रचेता लोक का जो इच्छा था संसार करना है, संसार में संसारिक करके भगवान स्वयं ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए स्वयं पत्नी ढूंढ कर दिए और संसार चलाए, लेकिन संसार का साथ कभी भक्ति को नहीं भूले, भक्ति को कभी नहीं भूले, भगवान को नाम को कभी नहीं भूले, भगवान का जो समर्पण उसको नहीं भूले। लेकिन अभी के समय पे हमारे पास कोई ऐसा चीज आ जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे पास अभी 25 करोड़ रुपया वाला गाड़ी मिल जाए, हमें संपूर्ण भूल जाएंगे क्या भगवान है। अभी जैसा बॉम्बे में जो सबसे रिच पर्सन है उसको 25 करोड़ रुपया वाला की गाड़ी उन्होंने खरीदा है, जिसमें घूमेगा और उसमें सब लग्जरीस है, हर चीज लग्जरीस, उसका अंदर स्विमिंग पूल है, उसका अंदर खाने पीने से लेके सारी कुछ। तो वो भगवान को याद करेगा, बोलिए, और भगवान का भक्त क्या मांगेगा, ये तो यही चीज मांग रहा था उसको मिल गया। लेकिन भक्त आएगा तो क्या मांगेगा, बोला प्रभु कृपा करके हम हमारा पास है कि पुष्प का विमान भेज दो, हमें आपका पास चला जाए। भक्त का तो वही प्रार्थना होता है। और भक्त जब आता है भगवान से क्या मांगता है, क्या मांगता है, सारा संसार छूट जाए मेरा भक्ति ना छूटे। और भक्त बाहर का लोग आते हैं क्या मांगते हैं, सारा संसार ना छूटे भक्ति छूट जाए। संसार के प्रति इतने आसक्त है संसार छूट जाए, भक्त यही मांगते हैं संसार छूट जाए लेकिन भक्ति ना छूटे। लेकिन कर्मी लोग संसार के प्रति इतने आसक्त है, संसार की चीज सुबह से शाम तक ही मांगते रहते हैं, लिस्ट बनाते रहते हैं, मांगते रहते हैं ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी चीज कमी नहीं होना चाहिए। लास्ट में भगवान को तो भगवान बाई चांस वो चीज को पूर्ति नहीं कर पाए और अपना कर्म का अनुसार वो पूर्ति नहीं हो पाया तो भगवान को गाली देना चालू कर देंगे, भगवान पत्थर हो गए, भगवान ये हो गए, भगवान हमारे के लिए कुछ नहीं किया, ये भी लोग बोलते हैं। अभी एक व्यक्ति आया था बॉम्बे से, सुबह माला दिया, उन्होंने माला जप किया, एक माला करने के लिए दो माला करने के लिए संकल्प लेकर गया, तो क्या लगभग हमें 3 महीने का बाद थोड़ा कॉल किया उनको फीडबैक लेने के लिए, बोला देख तो पूछा माला कर रहे हो, माला माला क्या करूँ, आपका पास बोल कर आया था दो माला करने के लिए कि पत्नी के लिए कि पति के लिए, इसलिए दो करने के लिए बोला था, लेकिन इधर आते आते ऐसे संसार में ऐसा फंस गया और माला नहीं कर पाया, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करके आया था, भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं माला करूँगा, और भगवान मेरा ये काम पूरा नहीं किया मैं क्यों माला करूँगा, क्योंकि सांसारिक वस्तु का प्रति उन्होंने चीज़ को मांगा था तो सांसारिक वस्तु पूर्ति नहीं हुआ तब तो माला करना भी, तब तो उनको फिर भी फोन करके समझाया, बोला आप सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए चाहते हो, आप समझो भगवान वहाँ पे आपका इमीडिएटली वो सांसारिक वस्तु दे भी दें तब आप भजन कर पाओगे, बाइसन से आपका जिंदगी में कभी भी आपका बचपन से लास्ट तक आप शादी हुआ सब कुछ हो गया सब कुछ मिल गया लेकिन लास्ट में आपका कोई भी संतान नहीं हुई, और संतान नहीं होते हुए आप रोते रहा, और संतान नहीं होते हुए रोते रहा लेकिन फिर भी भगवान 15 साल 20 साल का बाद बाई चांस एक ही संतान दे दी, संतान देने का बाद आप बहुत उत्साही हो जाएंगे, संतान आज हुआ और काल का दिन में वो मर गई तो आप कितना दुखी होंगे, ध्यान देना चाहिए। तब ये सांसारिक वस्तु का प्रति क्यों आ सकते हैं, सांसारिक वस्तु क्यों मांगते हैं, भगवान का भक्ति क्यों मांगो, भगवान का भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिए है भक्ति के लिए, तो समझाने के बाद उन्होंने इतने अंधा बन चुका है क्योंकि इसी जगत पे ऐसा संसार में रहता है तो और क्या बोला जाए, और कुछ उसको बोलने का समय और नहीं था। फिर लास्ट में उनको एक ही शब्द ने बताया, फिर जिन जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए, क्या कष्ट आता है तो आप अपना भोजन को छोड़ देते हो, क्या बीमारी आती है तो आपका श्वास छोड़ देते हो, नहीं, फिर जरा सी तकलीफ आने से भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो, कभी कभी दो चीज मत छोड़िए, दो चीज क्या है, भोजन और भजन, भोजन छोड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और भजन छोड़ोगे तो शांति नहीं रह पाओगे, इसीलिए आप दोनों को दोनों कंबाइन है भोजन और भजन में, इसलिए भोजन का साथ भजन, भजन करोगे भोजन मिलेगा, भोजन करोगे तो भजन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विश्वास का साथ निष्ठापूर्ण भक्त के लिए ये सफलता प्राप्त करेगा जब निष्ठा का साथ प्रभु का भक्त भक्ति करता है। हरे कृष्णा। कभी किसी का भी प्रश्न है पर्सनल मेरा को पूछ सकते हैं, 9 बज गया, यहीं पे कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधेश।